एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे कर लो एक वकील, मुकदमा हो करे कर लो एक वकील। तेरी देगा कौन गवाही रे, ओ कर लो एक वकील मुकदमा हो गरे, कर लो एक वकील।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके हृदयों को मनों को खोल दे, समझ शक्ति दे, तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे पिता, कि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में आ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे साथ हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है राजमार्गों और बाड़ों में जाओ भाग दो। प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत, जिसमें उसने एक धनी व्यक्ति के द्वारा अपने मित्रों को दावत में बुलाया गया था, उसके विषय में यीशु मसीह आगे समझाते हैं। इस दृष्टांत में भोज देने वाले को पता चला कि उसके निमंत्रण के साथ कैसा व्यवहार किया गया था और क्रोधित होकर उसने अपने सेवक से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। मेजबान ने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया जो उसकी उदारता का तिरस्कार करते थे और एक ऐसे वर्ग को आमंत्रित किया जो तृप्त नहीं था, जिनके पास मकान और जमीन नहीं थी। उसने उन लोगों को आमंत्रित किया और जो गरीब और भूखे थे और जो दिए गए उपहारों की सराहना करेंगे। मसीह ने कहा, कर लेने वाले और बेसियाएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मत्ती 21:31। यह यीशु मसीह फरीसियों को कह रहा था क्योंकि वे अपने आप को धर्मगुरु कहते थे, समझते थे, लेकिन वे परमेश्वर के राह में नहीं चलते थे। मनुष्य के वे नमूने चाहे कितने भी दयनीय क्यों ना हो, जिसे मनुष्य तुच्छ समझते हैं और जिनसे दूर हो जाते हैं, वे परमेश्वर के ध्यान और प्रेम के लिए बहुत कम या बहुत दयनीय नहीं है। मसीह चाहता है कि परेशान थके हुए उत्पीड़ित मनुष्य उसके पास आए। वह उन्हें वह प्रकाश, आनंद और शांति देना चाहता है जो कहीं और नहीं मिल सकती। सबसे सच्चे पापी उसकी गहरी ईमानदार दया और प्रेम के पात्र हैं। वह अपनी पवित्र आत्मा को कोमलता से उन पर तरस खाने के लिए भेजता है, उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश करता है। जो सेवक गरीबों और अंधे लोगों को लेकर आया था, उसने अपने स्वामी से कहा, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। और प्रभु ने सेवक से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जा और लोगों को अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए। यहाँ मसीह ने यहूदी धर्म के दायरे से बाहर दुनिया के राजमार्गों और सड़कों पर सुसमाचार के कार्य की ओर इशारा करता है। इस आदेश का पालन करते हुए पौलुस और बर्नाबास ने यहूदियों से कहा, यह जरूरी था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, लेकिन जब तुम उसे दूर करते हो तो अपने आप को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराते हो। तो देखो, हम अनजातियों की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का कारण हो। और जब अन्य जातियों ने यह सुना तो वे आनंदित हुए और प्रभु के वचन की महिमा की, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन सब ने विश्वास किया। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13:40-48 में। मसीह के शिष्यों द्वारा घोषित सुसमाचार संदेश दुनिया में उनके पहले आगमन की घोषणा थी। इसने लोगों को उनके प्रति विश्वास के माध्यम से उद्धार का शुभ समाचार दिया। इसने उद्धार के लिए महिमा में उसके लोगों के लिए मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा किया, और इसने लोगों के सामने विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से संतों की विरासत को प्रकाश में साझा करने की आशा रखी। यह संदेश आज लोगों को दिया गया है और इस समय इसके साथ मसीह के दूसरे आगमन की घोषणा भी है। जो संकेत उसने स्वयं अपने आगमन के बारे में दिए थे वे पूरे हो गए हैं, और परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हम जान सकते हैं कि प्रभु द्वार पर है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले सुसमाचार संदेश की घोषणा की भविष्यवाणी की है। वह एक स्वर्गदूत को स्वर्ग के बीच में उड़ते हुए देखता है, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। और वह ऊंचे शब्द से कहता है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य 14:6-7। भविष्यवाणी में न्याय की यह चेतावनी इसके संबंधित संदेशों के बाद स्वर्ग के बादलों में मनुष्य के पुत्र का आना होता है। न्याय की घोषणा मसीह के दूसरे आगमन की घोषणा है जो निकट है, और इस घोषणा को सनातन सुसमाचार कहा जाता है। इस प्रकार मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार, इसकी निकटता की घोषणा सुसमाचार संदेश का एक अनिवार्य हिस्सा दिखाया गया है। बाइबल घोषणा करती है कि अंतिम दिनों में मनुष्य संसारिक कामों, मौज मस्ती और धन कमाने में डूबा रहेगा। वे शाश्वत वास्तविकताओं के प्रति अंधे हो जाएंगे। मसीह कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, उस दिन तक जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ गया और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उन्हें कुछ पता ना चला, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 37 से 39 में। यह आज भी यही स्थिति है, लोग लाभ और स्वार्थी भोग विलास की दौड़ में इस तरह भाग रहे हैं मानो ना कोई ईश्वर है, ना कोई स्वर्ग है और ना ही कोई परलोक है। नूह के दिनों में बाढ़ की चेतावनी लोगों को उनकी दुष्टता से डराने और उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए भेजी गई थी। इसलिए मसीह के जल्द आने का संदेश लोगों को संसारिक चीजों में उनकी तल्लीनता से जगाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें शाश्वत वास्तविकताओं की भावना से जागृत करना है ताकि वे प्रभु की मेज के निमंत्रण पर ध्यान दे सकें। सुसमाचार का निमंत्रण पूरी दुनिया को दिया जाना है। हर एक राष्ट्र, कुल, भाषा और लोगों को, कहता है प्रकाशित वाक्य 14:6 में, चेतावनी और दया का अंतिम संदेश पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा से प्रकाशित करना है। इसे सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचना है, अमीर और गरीब, ऊंचे और निचले। मसीह कहते हैं, सड़कों और बाड़ों में जाओ और लोगों को अंदर आने के लिए मजबूर करो ताकि मेरा घर भर जाए। सुसमाचार के अभाव में दुनिया नष्ट हो रही है। परमेश्वर के वचन का अकाल है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मानवीय परंपरा से अलग होकर वचन का प्रचार करते हैं। हालांकि लोगों के हाथों में बाइबल है, लेकिन उन्हें वह आशीर्वाद नहीं मिलता जो परमेश्वर ने उनके लिए उसमें रखा है। प्रभु अपने सेवकों को लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बुलाते हैं। अनंत जीवन का वचन उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो अपने पापों में नाश हो रहे हैं। राजमार्गों और बाड़ों में जाने की आज्ञा में मसीह उन सभी के काम को सामने रखता है जिन्हें वह अपने नाम में सेवा करने के लिए बुलाता है। पूरी दुनिया मसीह के सेवकों के लिए मैदान है। पूरा मानव परिवार उनकी मंडली में शामिल है। प्रभु की इच्छा है कि उनके अनुग्रह का वचन हर आत्मा तक पहुंचाया जाए और जिसने भी इस अनुग्रह का संवाद सुना है और सुनता है उसे इसे दूसरों तक पहुंचाना है। काफी हद तक इसे व्यक्तिगत श्रम द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। यह मसीह का तरीका था। उनका काम काफी हद तक व्यक्तिगत साक्षात्कारों से बना था। उन्हें एक आत्मा के श्रोताओं के प्रति एक वफादार सम्मान था। उस एक आत्मा के माध्यम से संदेश अक्सर हजारों तक पहुंचाया जाता था। हमें आत्माओं के हमारे पास आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें वहीं खोजना चाहिए जहां वे हैं। जब वचन को मंच पर प्रचारित किया जाता है तो काम अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुसमाचार तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि इसे उन तक ना पहुंचाया जाए। आज मैं आपको यह सुसमाचार आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। दावत का निमंत्रण सबसे पहले यहूदी लोगों को दिया गया था, वे लोग जिन्हें लोगों के बीच शिक्षक और नेता के रूप में खड़े होने के लिए बुलाया गया था, वे लोग जिनके हाथों में मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करने वाले भविष्य सूचक स्क्रोल थे और जिनके लिए उनके मिशन की पूर्व सूचना करने वाली प्रतीकात्मक सेवा सौंपी गई थी। यदि पुजारियों और लोगों ने इस आह्वान पर ध्यान दिया होता तो वे दुनिया को सुसमाचार का निमंत्रण देने में मसीह के दूतों के साथ एकजुट हो जाते। सत्य उन्हें भेजा गया था ताकि वे इसे प्रदान कर सके। जब उन्होंने इस आह्वान को अस्वीकार कर दिया, इस बुलाहट को अस्वीकार कर दिया, तो इसे गरीबों, अपंगों, लंगड़ों और अंधे लोगों को भेजा गया। कर असूलने वालों और पापियों ने निमंत्रण प्राप्त किया। जब सुसमाचार का आह्वान अन्य जातियों को भेजा जाता है तो कार्य करने की वही योजना होती है। संदेश सबसे पहले राजमार्गों पर दिया जाना चाहिए, उन लोगों को जो दुनिया के काम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लोगों के शिक्षकों और नेताओं को। प्रभु के दूतों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। झुंड के चरवाहों, ईश्वर द्वारा नियुक्त शिक्षकों के लिए यह एक ऐसा वचन होना चाहिए जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग समाज के उच्च पदों पर हैं, उन्हें कोमल स्नेह और भाईचारे के साथ खोजा जाना चाहिए। व्यवसायिक जीवन में काम करने वाले, भरोसेमंद उच्च पदों पर काम करने वाले, बड़ी आविष्कारशील क्षमताओं और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि वाले लोग, प्रतिभाशाली लोग, सुसमाचार के शिक्षक जिनके दिमाग को इस समय के लिए विशेष सत्यों के लिए नहीं बुलाया गया है, उन्हें सबसे पहले बुलावा सुनाना चाहिए, उन्हें निमंत्रण दिया जाना चाहिए। धनवानों के लिए एक काम किया जाना है, उन्हें स्वर्ग के उपहारों को सौंपे जाने के कारण अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले को अपना हिसाब देना होगा। धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम और भय में आपके श्रम की आवश्यकता है, मेरी श्रम की आवश्यकता है। अक्सर वह अपने धन पर भरोसा करता है और अपने खतरे को महसूस नहीं करता। उसके मन की आंखों को स्थायी मूल्य की चीजों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। उसे सच्ची भलाई के अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है, जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह हम पढ़ते हैं मत्ती 11 का 28 से 30 में। जो लोग अपनी शिक्षा, धन या व्यवसाय के लिए दुनिया में ऊंचे स्थान पर हैं, उन्हें आत्मा के हितों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से शायद ही कभी संबोधित किया जाता है। कई ईसाई कार्यकर्ता इन कक्षाओं में जाने से कतराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो हम उसे मरते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वह वकील, व्यापारी या न्यायाधीश था। अगर हम किसी व्यक्ति को खाई से नीचे गिरते हुए देखते हैं तो हम उन्हें वापस बुलाने में संकोच नहीं करेंगे, चाहे उनकी पदवी या व्यवसाय कुछ भी हो। ना ही हमें लोगों को आत्मा के खतरे के बारे में चेतावनी देने में संकोच करना चाहिए। संसारिक चीजों के प्रति उनकी स्पष्ट भक्ति के कारण किसी की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उच्च सामाजिक पदों पर बैठे कई लोग दिल से दुखी हैं और घमंड से बीमार हैं। वे शांति की तलाश कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है। समाज के सबसे ऊंचे पदों पर के लोग उद्धार के लिए भूखे और प्यासे हैं। यदि प्रभु के सेवक व्यक्तिगत रूप से दयालु तरीके से मसीह के प्रेम से कोमल हृदय से उनसे संपर्क करें तो कई लोगों को सहायता मिलेगी। सुसमाचार संदेश की सफलता विद्वानी भाषणों, वाक्पटु गवाहियों या गहरे तर्कों पर निर्भर नहीं करती। यह संदेश की सरलता और जीवन की रोटी के लिए भूखे आत्माओं के लिए इसके अनुकूलन पर निर्भर करता है। मैं उधार पाने के लिए क्या करूं, यह आत्मा की चाह है। हजारों लोगों तक सबसे सरल और विनम्र तरीके से पहुंचा जा सकता है। सबसे बुद्धिमान, जिन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली पुरुष और महिला के रूप में देखा जाता है, अक्सर ऐसे व्यक्ति के सरल शब्दों से तरोताजा हो जाते हैं। जो ईश्वर से प्रेम करता है और जो उस प्रेम के बारे में उतनी ही स्वाभाविकता से बोल सकता है जितना कि संसारिक व्यक्ति उन चीजों के बारे में बोलता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। अक्सर अच्छी तरह से तैयार और अध्ययन किए गए शब्दों का बहुत कम प्रभाव होता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र या पुत्री की सच्ची ईमानदार अभिव्यक्ति जो स्वाभाविक सादगी में कही जाती है में उन दिलों के दरवाजे खोलने की शक्ति होती है जो मसीह और उसके प्रेम के खिलाफ लंबे समय से बंद हैं। मसीह के लिए काम करने वाले को याद रखना चाहिए कि उसे अपनी ताकत से काम नहीं करना है, उसे बचाने की उसकी शक्ति पर विश्वास के साथ परमेश्वर के सिंहासन को थामना चाहिए। उसे प्रार्थना में परमेश्वर से कुश्ती लड़नी चाहिए और फिर परमेश्वर द्वारा उसे दी गई सभी सुविधाओं के साथ काम करना चाहिए। पवित्र आत्मा उसकी कार्य कुशलता के रूप में प्रदान की जाती है। दिलों को प्रभावित करने के लिए सेवा करने वाले स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। यह परमेश्वर का वचन है और यह उसका आश्वासन है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुने हैं तो उसमें चलिए और उस संदेश को दूसरों को भी बांटिए। यदि आप परमेश्वर का वचन पहले नहीं सुने थे और सोचते थे कि आप परमेश्वर के परिवार से दूर हैं, तो आज परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके दिल तक पहुंचता है। परमेश्वर आपको निमंत्रण देता है, आपको भी वह बुलाता है अपने भोज में कि आप भी शामिल होइए। आपको भी वह अपनाना चाहता है कि आप उसके साथ बैठे और उसके साथ भोजन करें। वह आपको उद्धार करना चाहता है, वह आपको स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है, वह आपको बचाना चाहता है। आज आप उसके जीवन के रोटी को ग्रहण करें और यदि आप परमेश्वर के वचन को पहले सुन लिए हैं और ग्रहण किए हैं, इस वचन को दूसरों को बांटने में कार्य करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तेरे वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे वचनों के द्वारा आश्रित कर और हमें तेरा आत्मा दे ताकि हम तेरे रास्ता में चल सके। हम सबों के मनों को तू तैयार कर, तेरे राज्य के तैयार हो सके और तेरे राज्य में हो सके। यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।